एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और स्वागत है इस कह सकते हैं गहन चर्चा में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सचमुच दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी किताब जिसने आप समझिए विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया और आज भी जिसकी गूंज सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की कालजयी कृति ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज।
हाँ, प्रजातियों की उत्पत्ति पर।
जी
बिल्कुल, और देखिए ये सिर्फ जीव विज्ञान की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, हमारे इतिहास और प्रकृति में हमारी जगह के बारे में है। आज भी आप देखिए चिकित्सा, पर्यावरण, यहाँ तक कि हम समाज को कैसे समझते हैं, उस पर इसके विचारों का गहरा असर है।
तो सवाल ये उठता है कि भाई 150 सदी से भी ज्यादा पुरानी ये किताब आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है?
यही तो कमाल है इसका। ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। पृथ्वी पर इतनी तरह के जीव जंतु, ये सब कैसे आए? हम इंसान, हम इस विशाल जैविक पहेली में कहाँ फिट होते हैं?
चलिए तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं डार्विन के साथ।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने ये क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 19वीं सदी के एक अंग्रेज प्रकृतिवादी थे।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि वो कोई प्रयोगशाला में बंद रहने वाले वैज्ञानिक नहीं थे।
नहीं बिल्कुल नहीं, उनकी असली यूनिवर्सिटी तो वो थी 5 साल लंबी समुद्री यात्रा HMS बीगल नाम के जहाज पर।
अच्छा, बीगल यात्रा।
हाँ, 1831 से 1836 तक। इस यात्रा ने उन्हें दुनिया का कोना कोना दिखाया। आप सोचिए, दक्षिण अमेरिका के जंगल, गैलापागोस के वो अनोखे द्वीप, ऑस्ट्रेलिया के तट, यहीं उन्होंने प्रकृति को इतने करीब से देखा, इतने ध्यान से परखा कि उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे।
सही कहा, मतलब वो औपचारिक डिग्रियों से ज्यादा अपने अवलोकन, अपने सवालों और कह सकते हैं अपने अथक परिश्रम पर यकीन रखते थे।
बिल्कुल, जैसे गैलापागोस द्वीप पर उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर फिंच चिड़ियों की चोंच थोड़ी अलग थी,
हाँ
या फिर कछुओं के कवच का आकार अलग था।
हाँ छोटी छोटी बातें थीं ये तो।
हाँ, मगर डार्विन के लिए ये बड़े विचारों के बीज बने। उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या ये प्रजातियां हमेशा से ऐसी ही थीं या फिर समय के साथ बदली हैं?
और ये भी गौर करने वाली बात है कि यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने लगभग 20 साल लगा दिए अपने विचारों को पुख्ता करने में।
20 साल?
हाँ, ये कोई जल्दबाजी में लिखा गया सिद्धांत नहीं था।
नहीं, उन्होंने कबूतर पाले ये समझने के लिए कि इंसान कैसे अपनी पसंद के जानवर चुनकर नई नस्लें बना लेता है।
अच्छा,
कबूतर।
हाँ
और उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से चिट्ठियां लिखीं, जीवाश्मों का अध्ययन किया, भूविज्ञान और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा, चार्ल्स लायल, माल्थस, इन सब के काम को समझा। बिल्कुल, मतलब जमीनी हकीकत का अनुभव, फिर धैर्यपूर्वक प्रयोग और दूसरे विज्ञानों से सीखना।
बिल्कुल, इसी अनोखे संगम ने उन्हें विकासवाद का इतना मजबूत सिद्धांत बनाने की शक्ति दी। वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो जोड़ रहे थे। अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे एक तरह से।
तो ये किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आखिर है क्या? जैसा आपने कहा, ये कोई यात्रा की कहानी नहीं है।
नहीं, ये एक बेहद सधा हुआ, तर्कों और सबूतों से भरा वैज्ञानिक दस्तावेज है।
और इसका जो केंद्रीय विचार था वो तो क्रांतिकारी था ही।
हाँ बिल्कुल, डार्विन ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की ये जो अपार विविधता हम देखते हैं, लाखों तरह के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब अलग अलग नहीं बनाए गए।
अच्छा,
बल्कि ये सभी एक ही सामान्य पूर्वज से लाखों करोड़ों सालों के दौरान धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बदलते हुए विकसित हुए हैं।
अरे वाह, मतलब हम सब पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब एक ही बड़े परिवार के सदस्य हैं।
इसे उन्होंने कहा था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, है ना?
जी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे बदलावों के साथ आगे बढ़ना। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है।
बिल्कुल, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? मतलब कौन तय करता है कि कौन सा बदलाव टिकेगा और कौन सा नहीं?
सही सवाल। यहीं पर डार्विन का दूसरा बड़ा विचार आता है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन।
नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
इसे समझने के लिए डार्विन ने दो चीजों पर जोर दिया। पहली, विविधता, वेरिएशन,
विविधता यानी वैरायटी।
हाँ, किसी भी प्रजाति को देखें, उसके सदस्य एक जैसे नहीं होते। हम इंसानों में ही देख लीजिए, कोई लंबा, कोई छोटा, किसी की आंखें अलग, किसी के बाल। प्रकृति में हर जगह ऐसे छोटे छोटे अंतर मौजूद हैं। ये है पहली चीज।
ठीक है, और दूसरी?
और दूसरी चीज है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस,
जीने की जद्दोजहद।
हाँ, दुनिया में संसाधन सीमित हैं, खाना, पानी, रहने की जगह, और हर जीव को खतरों का सामना करना पड़ता है। शिकारी हैं, बीमारियां हैं, मौसम की मार है,
उड़मची है जीने के लिए।
तो
विविधता और संघर्ष, इन दोनों से प्राकृतिक चयन कैसे होता है, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, यही तो डार्विन की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने कहा, सोचिए अगर किसी जीव में कोई ऐसा छोटा सा अंतर, कोई वेरिएशन है, जो उसे इस संघर्ष में थोड़ी सी भी बढ़त देता है। मान लीजिए वो थोड़ा तेज भाग सकता है शिकारी से बचने के लिए,
या ठंड बेहतर झेल सकता है।
हाँ, या ठंड बेहतर झेल सकता है, या किसी बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है, तो उसके जीवित रहने और बच्चे पैदा करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना?
ये तो है, वो ज्यादा टिकेगा।
और फिर उसके बच्चे भी शायद वही फायदेमंद गुण लेके पैदा होंगे।
अच्छा, हाँ, ये हो सकता है।
बिल्कुल, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये फायदेमंद गुण ज्यादा फैलते जाएंगे, क्योंकि जिनके पास ये गुण हैं, वो ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और लाखों सालों में, याद रखिए, लाखों सालों में ये छोटे छोटे बदलाव जमा होकर इतने बड़े हो सकते हैं कि एक नई प्रजाति ही बन जाए।
कमाल है।
प्रकृति खुद ही चयन कर रही है उन गुणों का जो उस माहौल में सबसे फिट बैठते हैं। कोई बाहरी ताकत नहीं, कोई डिजाइनर नहीं, बल्कि जीने का संघर्ष ही विकास की दिशा तय कर रहा है।
इसने तो मतलब ईश्वर द्वारा डिजाइन की गई एक स्थिर दुनिया की जो धारणा थी,
हाँ,
उसको पूरी तरह हिलाकर रख दिया होगा उस समय।
बिल्कुल, इसीलिए तो ये क्रांतिकारी किताब थी।
ये तो कमाल का विचार है। तो डार्विन ने अपनी किताब में इस विचार को मतलब साबित कैसे किया, शुरुआत कहाँ से की उन्होंने?
हाँ, उन्होंने शुरुआत बहुत चतुराई से की। उन्होंने पहले वो उदाहरण दिया जिसे लोग आसानी से समझ सकें, कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
अच्छा, कृत्रिम चयन। हाँ, जो इंसान करते हैं।
हाँ, जो हम इंसान करते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे किसान और पशुपालक सदियों से अपनी पसंद के गुणों वाले जानवरों या पौधों को चुनकर उनका प्रजनन कराते आए हैं।
हाँ, ये तो है।
सोचिए, जंगली पत्ता गोभी से हमने गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी जैसी कितनी अलग अलग सब्जियां बना ली।
बिल्कुल।
या फिर जंगली भेड़िए से इतने अलग अलग तरह के कुत्ते।
हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं, कुत्तों की कितनी नस्लें हैं।
तो उनका तर्क ये था कि अगर इंसान कुछ सौ या हजार सालों में इतना बदलाव ला सकता है,
बिल्कुल,
तो प्रकृति, जिसके पास लाखों करोड़ों साल हैं और जो हर छोटे से छोटे गुण पर ध्यान दे सकती है, वो कितना ज्यादा बदलाव ला सकती है।
ये तो बहुत शक्तिशाली दलील थी।
हाँ, फिर उन्होंने दिखाया कि ये जो विविधता हम पालतू जानवरों में देखते हैं, वो जंगली जीवों में भी भरपूर है। कोई साफ लकीर नहीं है प्रजाति और किस्म के बीच। आज की किस्म कल की नई प्रजाति बन सकती है। इनको उन्होंने इंसिपिएंट स्पीशीज कहा था।
अच्छा, इंसिपिएंट स्पीशीज यानी उभरती हुई प्रजातियां।
हाँ,
ठीक है, तो कृत्रिम चयन से उन्होंने भूमिका बांधी, फिर प्राकृतिक चयन के तंत्र को समझाया, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ तर्क दिया या कुछ सबूत भी पेश किए?
अरे, सबूत, सबूतों की तो भरमार है किताब में। डार्विन ने कई अलग अलग क्षेत्रों से प्रमाण जुटाए, जैसे जीवाश्म रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड।
फॉसिल्स, हाँ
हाँ, हालांकि वो मानते थे कि ये रिकॉर्ड अधूरा है, जैसे एक किताब जिसके कई पन्ने गायब हों, फिर भी जो जीवाश्म मिलते हैं वो दिखाते हैं कि समय के साथ जीवन सरल से जटिल हुआ है। और हमें कुछ मध्यवर्ती रूप भी मिलते हैं, ट्रांजिशनल फॉर्म्स, जो दो अलग समूहों के बीच की कड़ी जैसे लगते हैं।
और वो गैलापागोस वाले अनुभव बीगल यात्रा के,
हाँ,
उनका क्या हुआ?
हाँ, वो भी भौगोलिक वितरण यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक और मजबूत सबूत था।
अच्छा,
उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्यों है कि किसी द्वीप पर मिलने वाले जीव पास के महाद्वीप के जीवों जैसे ही होते हैं, पर थोड़े अलग? जैसे गैलापागोस के फिंच, वो दक्षिण अमेरिका के फिंच जैसे थे, पर हर द्वीप पर उनकी चोंच थोड़ी अलग थी। क्यों?
हाँ, क्यों?
डार्विन ने समझाया, उनके पूर्वज शायद महाद्वीप से आए होंगे, फिर अलग अलग द्वीपों पर पहुंचकर वहां के माहौल के हिसाब से धीरे धीरे बदल गए। पहले प्रवासन हुआ, फिर अलगाव और फिर विकास।
हाँ, ये तो बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। और क्या सबूत दिए उन्होंने?
उन्होंने जीवों के शरीर की बनावट देखी, यानी आकारी की, मॉर्फोलॉजी,
शरीर की बनावट।
हाँ, उन्होंने पाया कि अलग अलग काम करने वाले अंग भी अंदर से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आप देखिए, इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर और घोड़े की अगली टांग, इन सब के अंदर हड्डियों का ढांचा मूल रूप से एक जैसा है।
अरे ये कैसे?
इसे समजात संरचनाएं कहते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। डार्विन ने कहा ये अलग अलग डिजाइन का सबूत नहीं बल्कि एक साझे पूर्वज से विरासत में मिले ढांचे का सबूत है, जिसे अलग अलग जरूरतों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल लिया गया।
वाह, ये तो जैसे एक ही ब्लूप्रिंट से अलग अलग तरह के मकान बनाना हुआ, कमाल है।
बिल्कुल। फिर उन्होंने भ्रूण विज्ञान की बात की, एम्ब्रियोलॉजी।
भ्रूण, एम्ब्रियो।
हाँ, शुरुआती अवस्था में मछली, कछुए, मुर्गी और इंसान, इन सब के भ्रूण इतने मिलते जुलते हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल होता है। ये भी साझे वंश की ओर इशारा करता है। और फिर हैं अवशेषी अंग, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स।
अवशेषी अंग मतलब जो अंग अब काम के नहीं है।
हाँ बिल्कुल, वो अंग जो अब किसी काम के नहीं लगते, जैसे हम इंसानों में अक्ल दाढ़ या अपेंडिक्स, या उड़ ना सकने वाले पक्षियों के वो छोटे से पंख, या कुछ सांपों में टांगों के निशान। ये क्यों है?
हाँ क्यों है?
क्योंकि ये हमारे पूर्वजों में काम के थे। ये परफेक्ट डिजाइन नहीं बल्कि इतिहास के बचे हुए निशान है, विकास के निशान।
तो जीवाश्म, भूगोल, शरीर की बनावट, भ्रूण, अवशेषी अंग, इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों से सबूत एक ही कहानी कह रहे थे, रूपांतरण के साथ वंशानुक्रम, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन।
हाँ, और डार्विन ने अपनी किताब के अंत में यही कहा, उन्होंने कहा कि उनका सिद्धांत प्राकृतिक चयन द्वारा विकास इन तमाम बिखरे हुए तथ्यों को एक साथ पिरोता है और उनकी कहीं ज्यादा तार्किक और सुसंगत व्याख्या करता है, बजाय ये मानने के कि हर प्रजाति को अलग से खास तौर पर बनाया गया था। उन्होंने लिखा कि जीवन के इस नजरिए में भी एक शान है, एक भव्यता है, ये सोचना कि कैसे एक सरल सी शुरुआत से इतने अनगिनत खूबसूरत और अद्भुत रूप विकसित हुए हैं और आज भी हो रहे हैं।
ये वाकई हाँ सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम इस पूरी किताब के निचोड़ की बात करें, वो मुख्य संदेश क्या है जो हमें आज भी याद रखने चाहिए? कुछ खास बातें।
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो प्राकृतिक चयन ही है। ये समझना कि विकास कोई मतलब तयशुदा रास्ते पे नहीं चलता, ये माहौल और मौके का खेल है। प्रकृति लगातार प्रयोग कर रही है और जो उस माहौल में फिट बैठता है वो आगे बढ़ता है।
ये एक बिना दिशा वाली लेकिन बेहद शक्तिशाली रचनात्मक प्रक्रिया है।
बिल्कुल।
और दूसरा बड़ा संदेश जो मुझे हमेशा चौंकाता है वो है सार्वभौमिक सामान्य वंश का, यूनिवर्सल कॉमन डिसेंट।
हाँ ये बहुत गहरा विचार है।
हाँ ये विचार कि पृथ्वी का हर जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पेड़ हो या हम इंसान, सब एक ही जीवन वृक्ष की शाखाएं हैं, एक ही पूर्वज की संतानें। यह हमें प्रकृति के केंद्र में नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनाता है।
सही कहा। भारत में जो वसुधैव कुटुंबकम या विविधता में एकता की बात करते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से उसी जुड़ाव को दिखाता है ना?
बिल्कुल।
हाँ, और ये तभी संभव है जब हम गहन भूवैज्ञानिक समय को समझें, डीप टाइम। पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, ये विशाल समय का पैमाना जरूरी है ताकि इतने धीमे क्रमिक बदलाव हो सके। विकास कोई मतलब रातों रात होने वाली चीज नहीं है।
इसी से जुड़ा है क्रमिकता का विचार, ग्रेजुअलिज्म, कि विकास छोटी छोटी लगातार जमा होती तब्दीलियों से होता है, अचानक बड़ी छलांगों से नहीं। यह हमें, मुझे लगता है, धैर्य रखना सिखाता है कि बड़े बदलावों में वक्त लगता है।
एक और अहम बात है प्रकृति की अपूर्णता को स्वीकार करना।
अपूर्णता?
हाँ, जैसे हमने अवशेषी अंगों की बात की या कुछ जीवों की अजीबो गरीब बनावट, ये दिखाती है कि प्रकृति कोई परफेक्ट इंजीनियर नहीं है। ये विकास के इतिहास का नतीजा है जिसमें कई बार काम चलाऊ समाधान भी होते हैं। ये खामियां ही विकास का सबूत हैं।
अच्छा, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है।
हाँ, और अंत में जीवन और पर्यावरण की अंतर संबंधता,
सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ, कोई भी जीव अकेले विकसित नहीं होता, वो अपने आसपास के माहौल, शिकारी, शिकार, साथी, प्रतिस्पर्धी, जलवायु के साथ लगातार लेन देन करता है और उसी के संदर्भ में बदलता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक जटिल जाल का हिस्सा हैं और किसी एक हिस्से में बदलाव का असर पूरे जाल पर पड़ता है। ये तो हुए मुख्य संदेश। और आपने कहा था डार्विन की लिखने की शैली भी कमाल की थी, कुछ यादगार पंक्तियां?
हाँ बिल्कुल, कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे दिमाग पर असर करती हैं।
जैसे वो पंक्ति जो प्राकृतिक चयन का सार बताती है, जितने जीव पैदा होते हैं उनमें से संभवतः जितने जीवित रह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा होते हैं। कोई भी जीव अगर उसमें अपने लिए फायदेमंद जरा सा भी बदलाव आता है तो उसके जीवित रहने की संभावना बेहतर होगी और इस तरह उसका प्राकृतिक रूप से चयन हो जाएगा।
ये बिल्कुल साफ कर देती है, ज्यादा पैदाइश, फिर संघर्ष, उसमें कुछ भिन्नता और फिर जो सबसे योग्य है उसका बचना।
हाँ, यही है प्राकृतिक चयन का मूल मंत्र।
बिल्कुल।
और किताब के अंत में वो अद्भुत पंक्ति, वो मुझे बहुत पसंद है। जीवन के इस दृष्टिकोण में एक शान है कि कैसे एक इतनी सरल शुरुआत से अंतहीन रूप जो सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत हैं, विकसित हुए हैं और हो रहे हैं।
हाँ, ये दिखाती है कि डार्विन का नजरिया जीवन के प्रति आश्चर्य और सम्मान से भरा था। विकास कोई ठंडी नीरस प्रक्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि की रचनात्मकता का एक, कह सकते हैं, अद्भुत नजारा है। काल और मृत्यु से वह सर्वोच्च लक्ष्य जिसका हम विचार कर सकते हैं, अर्थात उच्चतर प्राणियों का उत्पादन सीधे तौर पर होता है।
हाँ, ये कठोर जरूर लगती है सुनने में, पर यह दिखाती है कि विकास की प्रक्रिया आसान नहीं है। संघर्ष और कठिनाइयां ही बदलाव और जटिलता को जन्म देती हैं। प्रकृति की रचनात्मकता इसी कठोरता से निकलती है एक तरह से।
और वो जुड़ाव वाली बात फिर से, हर जैविक प्राणी की संरचना अन्य सभी जैविक प्राणियों की संरचना से संबंधित है।
हाँ, ये फिर से उसी पारिस्थितिक जाल, इकोलॉजिकल वेब की याद दिलाती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर जीव अपने पड़ोसियों और अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता भी है।
ये तो हुई सिद्धांत और दर्शन की बातें, लेकिन क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी डार्विन के विचारों की कोई जगह है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन?
अरे बिल्कुल है। आप सोचिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है।
हाँ, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया में जरा सा भी बदलाव है, कोई म्यूटेशन है जो उन्हें दवा से बचाता है, तो वो बच निकलते हैं और फिर वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
अच्छा।
नतीजा, सुपरबग्स, ऐसी बैक्टीरिया जिन पर दवाएं बेअसर हैं। ये हमारी आंखों के सामने होता हुआ प्राकृतिक चयन है। हम खुद चयन कर रहे हैं उन बैक्टीरिया का जो दवा से बच सकते हैं।
और वायरस, फ्लू हो या कोविड-19, ये वायरस तो लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं।
बिल्कुल, इसीलिए हमें हर साल फ्लू का नया टीका चाहिए होता है या कोविड के नए नए वायरेंट्स आते रहते हैं। विकासवाद को समझे बिना हम इन बीमारियों से प्रभावी ढंग से लड़ ही नहीं सकते।
सही कहा।
चिकित्सा में एक और दिलचस्प अवधारणा है, मिसमैच रोग, मिसमैच डिजीजेस।
मिसमैच रोग, ये क्या है?
जैसे टाइप 2 डायबिटीज या दिल की बीमारियां।
हाँ,
हो सकता है इनके लिए जिम्मेदार कुछ जीन हमारे उन पूर्वजों के लिए फायदेमंद रहे हों जब खाना कम मिलता था।
अच्छा।
कैसे? जैसे शरीर में फैट जमा करने की क्षमता। उस समय ये अच्छा था, लेकिन आज जब खाना भरपूर है और मेहनत कम, वही जीन हमारे लिए समस्या बन गए हैं।
हाँ,
हमारा शरीर पुराने माहौल के लिए बना है, पर हम नए माहौल में रह रहे हैं।
हाँ,
ये एक मिसमैच है।
अरे हाँ, ये तो बिल्कुल नई बात पता चली। और कृषि में?
कृषि में तो डार्विन का वो कृत्रिम चयन वाला सिद्धांत सीधे सीधे लागू होता है। बेहतर फसलें उगाना, ज्यादा दूध देने वाली गायें पालना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली किस्में विकसित करना, ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। और पर्यावरण संरक्षण में भी ये बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन बायोलॉजी में।
कैसे?
किसी लुप्त होती प्रजाति को बचाना है तो उसकी अनुवांशिक विविधता को समझना होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। विविधता ही उन्हें बदलते माहौल या नई बीमारियों का सामना करने की ताकत देती है। अगर सब एक जैसे होंगे तो एक ही बीमारी सबको सकम कर सकती है।
यानी ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे भोजन और हमारे ग्रह के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा असर हमारे नजरिए पर पड़ा है, ये समझना कि हम इंसान प्रकृति से अलग या ऊपर नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। ये हमें, कह सकते हैं, विनम्रता सिखाता है और प्रकृति के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि वो जुड़ाव का विचार कितना गहरा है। ये जानना कि मेरा, आपका, उस पेड़ का, उस चिड़िया का, सबका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाकर एक ही पूर्वज से है, ये दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बहुत शक्तिशाली विचार है ये।
हाँ, और मुझे प्राकृतिक चयन की वो सादगी और उसकी शक्ति चकित करती है। कैसे बिना किसी इरादे या डिजाइन के, सिर्फ जीवित रहने के संघर्ष और थोड़े से अंतर से, प्रकृति इतनी जटिल और अद्भुत चीजें बना लेती है। ये विज्ञान की सुंदरता है कि वो जटिल चीजों को सरल सिद्धांतों से समझा सकता है।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि विकास कोई अतीत की कहानी नहीं है जो खत्म हो चुकी है। ये अभी इसी पल हमारे चारों ओर हो रहा है। वायरस बदल रहे हैं, बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ लड़ना सीख रहे हैं। शायद हम इंसान भी धीरे धीरे अपनी इस बदलती हुई दुनिया के हिसाब से ढल रहे हैं। ये कहानी लगातार लिखी जा रही है और हम सब इसके पात्र हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।